ಗ್ರಹೇಶು ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಶೀರ್ಷಕ ಹೈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕಾ ಆತಂಕ. ತಮಂಗಮತ್ತಂ ಮಧು ಮಧುನೋರುಗಂಧಿನಾ ಚಡಿ ರಹತಿ ಥಿ फिर भी चूंकि उसने योग की महान तपस्या की थी और यद्यपि वह निंदनीय था किंतु तीन देवताओं ब्रह्मा शिव तथा विष्णु के अतिरिक्त सारे देवता अपने अपने हाथों में विविध भेंटे लेकर उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करते थे। राक्षस बनना है तो ऐसा बनो छोटे मोटे तात्पर्य स्कंद पुराण में वर्णन आया है उपायनं दधु सर्वे विना देवा हिरण्यक। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों देवों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति उसकी सेवा में लगा रहता था। मध्वाचार्य कहते हैं आदित्य वसव रुद्र त्रिविधा ही सुरायत। देवता तीन प्रकार के आदित्य वसु तथा रुद्र जिनके नीचे अन्य सारे देवता यथा मरुद तथा साध्य मरुदश्चैव विश्वेच साध्याश्चैव चतद्घटा। अतएव सारे देवता त्रिविष्टप कहलाते और वही त्रि शब्द ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के लिए भी प्रयुक्त होता है।
बताया गया आप स्वेच्छा से यहां आप आए हो तो बस यहां
तो स्वेच्छा से असुविधाओं को स्वीकार करना, इंद्रदत्त की वस्तु सामने पड़ी है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे इसे, क्यों? भविष्य में मैं कुछ ज्यादा लाभ लेने के लिए अभी मैं थोड़ा हानि भी हो जाएगा चलेगा, तथा कथित हानि, भविष्य में मुझे ज्यादा लाभ मिलेगा, बुद्धिमता का लक्षण है। कुत्ते बिल्ली तपस्या नहीं कर पाते, तुरंत खाना मिला तो छपा झपट लेते हैं उसको। मनुष्य जो बुद्धिमान, मनुष्य को आ जाएगी अभी अभी ये मत कर, 5 साल के बाद तेरे को लाभ मिलेगा, अभी तपस्या कर मेडिकल, बाद में तू अच्छा डॉक्टर बनेगा और ये बनेगा। ठीक ठीक है, मैं सोना कम करूंगा, खाना कम करूंगा, पढ़ाई कम करूंगा, पढ़ाई ज्यादा करूंगा, टीवी कम करूंगा, जो भी जो अच्छे लगते हैं उसको ना करते हुए, जो अच्छे नहीं लगते उनको स्वीकार करते हुए, इस तरह से कुछ भविष्य लाभ के लिए, उच्च कोटि का लाभ के लिए कुछ जब व्यक्ति करता है तो तपस्या है। गीता में अपनी अपनी समझ के अनुसार, देखिए अपनी अपनी समझ के अनुसार किस चीज को व्यक्ति मूल्य देता है उसके लिए वो तपस्या करता है। हर एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, हर एक व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ तकलीफ उठा रहा है, कुछ भविष्य में मुझे लाभ मिलेगा, पर अपने अपने ज्ञान के स्तर के अनुसार क्या लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वो फर्क पड़ता है। भौतिक संसार में सुख के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, कितना तपस्या, कितना त्याग करते हैं लोग, पर वो संसार वो सुख कैसा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इतनी सारी तपस्या और फल इतना तुच्छ, बड़ा तुच्छ प्रभाव महाराज कहते हैं, इतना सुख और वो भी डगमगाता हुआ, मिल रहा है सुख, इंद्रियों को और भी चाहिए और मन कह रहा है कि पता नहीं कल मिलेगा क्या नहीं, फिर से चिंता भी है। तो यन्मयी तुना ग्रह में सुखम ये तुच्छ कंडू या नहीं न करो वह दुख 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 को ही सुख समझने वाले। तो तपस्या तो हर एक व्यक्ति को करना है, किस प्रकार की तपस्या करें यह महत्वपूर्ण सवाल है। तो गीता में 3 प्रकार की तपस्या बताई गई है, 1 सतुगुणी तपस्या, 2 रजोगुणी तपस्या और 3 तमोगुणी तपस्या। सतुगुणी तपस्या क्या है? श्रद्धया परया तत्तम तपस्तत्त्रिवि त्रिविधं नरैः अफला आकांक्षिणे युक्त सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सात्विक यानी 3 चीज होना चाहिए, 1 भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, पूरी दुनिया जो भी तपस्या कर रही है उसमें कुछ लाभ है, गाजर सामने लटका हुआ इसलिए तो उसको देख के हम आगे बढ़ रहे हैं, गधा भी गाजर लटका तो उसको देख के आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भौतिक संसार में कुछ चीजें एक बिलबोर्ड में देखा कि ये है, ये प्राप्त करोगे तो देखो ऐसा है, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए तपस्या। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, पहला कर्तव्य के रूप में भले फल मिला पता नहीं, बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, बच्चा आदान प्रदान करेगा कि नहीं क्या मालूम, पर मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं, ये तपस्या फल की आकांक्षा न करने वाले। तो भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा वो श्रद्धा जो है भगवान के ऊपर, हम साइंटिस्ट के ऊपर लगाते हैं, देवी देवताओं के ऊपर लगाते हैं, लॉटरी के ऊपर लगाते हैं, वो मिल जाएगा फिर हो जाएगा, उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती। फिर सत्कार मान पूजार्थम तपो गंभीर चैवय क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, क्या तपस्या करना देख लो तुम लोग भी, किया है किसी ने ऐसा, किसी की हिम्मत है ऐसा करने की, आए वो तपस्या करने। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, पूजा लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की जाती है वह राजसी कहलाती है, रजोगुणी। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तपस्या एक व्यक्ति करता है और जैसे जैसे वो भोग करने लगता है तो सही क्या बोलते हैं उसको, बैंक में कार्ड, क्या कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड। जैसे तपस्या करना मतलब बैंक में पैसा डालना, फिर क्रेडिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मतलब तपस्या का फल। वो जाके जहां भी कुछ भी खरीदे तो वहां से वो घटता जाता है। तपस्या ऐसी जितना उपभोग की रजों की तपस्या, खटमल का तपस्या, ब्रह्मा जी कहते खटमल, खटमल आसुरी, आसुरी के लोग भी ऐसी तपस्या करते हैं। असुर लोग जितना तपस्या करते हैं देवता लोग उतना नहीं कर सकते, भक्त लोग भी नहीं कर सकते उतना। असुर लोगों में तपस्या क्यों, क्योंकि उनको दिखती है तपस्या का फल, मतलब कट्टर होते हैं वो लोग तपस्या करने में, हजारों हजारों साल तक खाएंगे नहीं। क्यों, खटमल क्या होता है, ठंडे के दिनों में वो एकदम तपस्या करके पतला हो जाता है, पेपर जैसा हो जाता है ठंडी में, बिस्तर के नीचे तपस्या करता हूं बैठ के, पूरी ठंडी में कुछ खाता नहीं पीता नहीं कुछ निकलता ही नहीं कुछ, वो पसीना के ऊपर है, जरायु जो अंडज उद्भिज श्वेदज चार प्रकार के, उसमें से एक श्वेदज मतलब ये खटमल, पसीने से निकलता उसका जन्म वहीं से होता, वहीं वहीं वो खिलता। जब गर्मी आती है तो खा पी के मोटा होता है। इस तरह से आसुरी तपस्या पहले अपने आप को सुखा देते पूरा, और लगता है बाप रे कुछ भी नहीं खाया कुछ भी नहीं सोया कितना भी किया, और एक बार जब उसका फल मिल गया तो पूरा कॉम्पेंसेट करते हैं, जो साल भर में नहीं किया एक साथ करते हो। तो ये एक प्रकार की तपस्या रजोगुणी तपस्या। और फिर मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्साहनार्थं वा तत्तामसं उदाहृतम्। मूर्खतावश पहले आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए तपस्या की जाती है और तामसी कहलाती है। तो पहला है तामसी तपस्या मतलब मूर्खतावश। क्यों मूर्खता, ऐसी चीज के लिए तपस्या कर रहे हो जो नहीं मिलने वाला है, मैं हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता हूं। अरे भगवान ने नियम बनाया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुग्रह, मैं ऐसा करूंगा उल्टा करूंगा, बिना रावण एक बार तपस्या किया सीढ़ी बनाने स्वर्ग के लिए, क्यों सीढ़ी बनाने का, बोले कोई भी चढ़ सकता है पापी व्यक्ति भी चढ़ सकता है, भगवान ने बनाया नहीं नहीं उद्धव गच्छति सत्वस्तः, जो सत्वगुणी है वो जाएगा, बिना सत्वगुण में रहे रजोगुण में मैं जाऊंगा नहीं हो सकता करूंगा ना, ऐसे ही प्रश्न और ऐसा ही मतलब वर्मा यासुरी तपस्या मूढ़ ग्रह है। ब्रह्मा जी की तपस्या इसीलिए विष्णु के पास नहीं जाते, विष्णु थप्पड़ मार के भेजेंगे पूरा कहेगा करोड़ों साल का तपस्या कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला। बुद्धिमान है या मूर्ख है? भले एक मूर्खता है तो बहुत बुद्धिमान है, भौतिक रूप से बहुत बुद्धिमान है, उनको बाद में विष्णु के पास जाकर कोई फायदा नहीं। एक बच्चा अगर दुकानदार के पास जाकर कहता है ये लो पैसा, ट्रिपल फाइव सिगरेट देना, देना ही पड़ेगा दुकानदार को, दुकान खोल के रखा, पैसा दिया तो उसको देना ही पड़ेगा। अब वही पैसा देके बाप के पास जाकर बोले पापा ये लो ट्रिपल फाइव सिगरेट देना, तो पैसा भी जेब में रखेगा और ट्रिपल फाइव थप्पड़ मार के भेजेगा। तो इसीलिए ये लोग देवताओं के पास जाते हैं। अब देखो रावण, हिरण्यकशिपु, इनको मालूम है प्रकाशु, तो ये असुरी की जान बुझ के जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाए, विष्णु के पास नहीं जाए, क्योंकि वो दे देते बोले ना बड़े चलो ठीक है क्या मांगता है ठीक है ले। बच्चे लोग होते हैं ना शराब, नहीं मम्मी मेरे को चाहिए, मिट्टी में लुढ़कने लगते हैं, हाथ पे मारने लगते, मां मेरे ले खा, क्या करेंगे ना ना बोल रहे तो समझता नहीं, खा समझ में आएगा तुम्हें, खाने के बाद में उठनी हो समझ में आएगा, नहीं फिर भी चाहिए ले खा। तंग करके मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए, आत्म उत्पीड़न के लिए मतलब प्रकाशव था, अपना पैर काट के फेंक दिया, हाथ काट के फेंक दिया, एक हाथ बचा था सर काटने के लिए, सर काटना जब बाकी था तो शिव जी बोले क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए बोलो, तब से चिल्ला रहा है क्या चाहिए बोलो, जिसके सर के ऊपर इतना हाथ हो उसके हजार टुकड़े हो जाए, भस्म हो जाए वो तथास्तु। पार्वती को देखा वाह कितनी सुंदर है, इसकी और उसके बीच में यही एक बीच में बैठा हुआ, इसको हटा दो तो फिर ये मेरी, तो हाथ बढ़ा दिया उसने। शिव जी के ऊपर सब हाथ रखता कुछ तो होने वाला नहीं था निश्चित रूप से, तो फिर अभी धर्म संकट, अगर वो सर फूट गया तो होगा ही नहीं, यानी शिव जी का ये वरदान ठीक नहीं, तो इसलिए वो भाग लगे, ये भी भाग लगे पीछे। इस तरह से इनका उद्देश्य ऐसा होता है। आत्म उत्पीड़न के लिए और अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए इतना मदोन्नत कर देता है ऐसी तपस्या। रावण, रावण भी तपस्या किया था और रावण की तपस्या से उसके बाद जब शक्ति मिली, इतना अहंकार मदोन्नत हो गया, नेवर्स एनी ओनर्स प्राइड, किसी के पास त्रिपुर सुंदरियों को पकड़ के लाना, जो जो जहां जहां मिस यूनिवर्स डिक्लेयर की गई उनको उठा के लिया, देवकन्या राजकन्या ऋषि कन्या कोई भेदभाव नहीं, समदर्शी सबको पकड़ के लाना, सबको पता चला कि एक है राम कोई जंगल में वनवासी घूम रहा है, उसकी पत्नी सबसे सुंदर है इन तीनों में, जितने सारे मेरे मन में भर भर के पड़े हुए हैं सब, इनसे सबसे सुंदरी वही है, वो भी मुझे चाहिए। कोई ऐसा चीज किसी के पास ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे पास नहीं, अरे मेरे पास है और किसी के पास नहीं होना चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। और इस तरह से शाप मिलते 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 नष्ट हो जाता है, बड़ा टांकी में एक बड़ा छेद कर दिया नीचे, समय की बात। हिरण्यकशिपु को बाद में कहते हैं भगवान के पास जब जाते हैं देवता तपस्या तंग आके, कहते हैं कि जब वो महाभागवत प्रहलाद को तकलीफ देगा तब उसके आयु श्री यशो धर्म आशीष एवच लोकम आशीष एवच, तपस्या का दुरुपयोग करने से ऐसे फल मिलता है, तो उसका दुरुपयोग करने से खास करके महाभाग भक्तों के प्रति जो भगवान को प्रिय है उनके प्रति जब किया जाता है तो आयु आयु उसकी घट जाती है, यश उसकी घट जाती है, संपत्ति उसकी घट जाती है, नष्ट हो जाती है, आयु यशो श्रेय धर्म सारा धर्म नष्ट हो जाता है, इतना धर्म से तपस्या किया हुआ, तपस्या प्राप्त किया हुआ, लोक उच्च लोक की प्राप्ति और आशीष बड़ों का आशीर्वाद चला जाता है, जितना भी आशीर्वाद मिला था वो सब नष्ट हो जाता है। जैसे कोई जहाज में छेद हो जाए, समय की बात है जहाज डूब जाता है, इस तरह से सारी तपस्या बह जाती है। तो तपस्या तो करना ही है, क्यों ना ऐसी तपस्या करें जिससे सर्वोच्च लाभ मिले, कम से कम तपस्या और सबसे ज्यादा लाभ। ये तो बुद्धिमत्ता है ना। कौन बिजनेस में कहेगा 5 पैसा डालो 5 करोड़ मिलेगा 5 दिन में, सिर्फ यहां 5 पैसा यहां रखो और 5 घंटे के अंदर, 5 दिन भी नहीं, 5 घंटे के अंदर 5 करोड़ मिलेगा। कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। भौतिक संसार में सुख पाने की तपस्या कैसी है, खोदा पहाड़ निकली चुकी है, करोड़ों की करोड़ों का इन्वेस्टमेंट 5 पैसे का लाभ, वो भी 5 मिनट के लिए। और आध्यात्मिक तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र का, ऋषभ देव अपने बच्चों को कहते हैं, 100 बच्चों को, जब वो वन में जा रहे थे अपने बच्चों को सब संपत्ति छोड़कर आदर्श उदाहरण दिखाने के लिए, क्योंकि राजा के पास सबसे ज्यादा धन संपत्ति ऐश्वर्य शक्ति पूजा लाभ प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा राजा को होता है, और सब कुछ होते हुए वो सब छोड़ के अगर वन में जाता है तो उससे ज्यादा प्रचार क्या है कि जीवन में मूल ये चीज नहीं है, भगवान के साथ संपर्क जोड़ना, ये सबसे मूल्यवान चीज, प्रेमा अपमान थोमा सबसे बड़ा धन प्रेम धन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मौरे प्रेते हो प्रेम धन। महाप्रभु शिक्षा सकनंद में चैतन्य चरितामृत में कहते हैं प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। दरिद्र कौन है और किसका जीवन व्यर्थ गया? दरिद्र जीवन किसका है, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है। और सबसे बड़ा धन क्या है? प्रेम। क्यों? प्रेम ऐसी चीज है जो भगवान को ही खरीद लेता है, इसीलिए तो हम दामोदर सुगम गाते हैं हर रोज, देखो यशोदा माई की क्या धनी है, वो भगवान को बांध लिए प्रेम के रस्सी से, वो बांध सकता है भगवान को, यशोदा माई ने प्रेम से बांधा है, भगवान बंध गए। स्वलीलानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तेर जितत्व। प्रेम भक्ति से मैं जीता जाता हूं, श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं पर भक्ति की शक्ति है कृष्ण को आकर्षित कर लेती है, कृष्ण बंध जाते हैं, उठ बैठा उठ पड़ा, बैठो बैठो, नाचो नाचता हूं, प्रथम स्थापे भी अच्युत अच्युत चलो दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापन करो, यस सर, पार्थ सारथी। तो वो दरिद्र नहीं है, कोलवेच श्रीधर देखने में दरिद्र था, भिगमंगा जैसा दिखता था, महाप्रभु ने बोला तू सबसे बड़ा, तू ढोंगी है, तू ढोंगी है, तू दुनिया को उल्लू बना रहा है, सबसे सबसे बड़ा धनी सबसे धनी आदमी तो तू ही है, लड़ाई नहीं देख लो मेरे पास एक पैसा नहीं, नहीं एक दिन तुझे पूरी दुनिया को मैं दिखाऊंगा, दूसरों को दिखाता है तू ढोंगी है कि तू फटा कपड़ा पहना हुआ है, तो तू सच में करोड़पति है, अरबपति है तू, अरब नहीं खरबपति, जो भी उसे भी पूछा। और एक दिन महाप्रभु ने उसके उस जंग पड़े हुए लोटे से पिया पानी, बेहोश होकर गिर गया। तो प्रेम धन बिना व्यर्थ, धर्म सुनिष्ठित पुंसाम विश्वम से न कथा सुय न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमैव हि केवलम्। श्रम व्यर्थ और दरिद्र जीवन, कि जिसका किसका जीवन व्यर्थ गया, जीवन के अंत में एक ही चीज आपसे पूछा जाएगा, भगवान के प्रति कितना प्रेम आपने प्राप्त किया, इतना यम किया, इतना नियम किया, इतना तपस्या किया, इतना व्रत किया, इतना दान किया, प्रेम कितना मिला आपके हृदय में। न उत्पादये यदि रतिम, भगवान के प्रति रति, त्वयि मे अनन्य विषया मतिर् मधुपते असकृत रतिम उद्वहता मद्दा गंगैव औघम उदन्मति। जिस तरह से गंगा जी बिना रुकावट के समुद्र की ओर बहती है, प्रभु मेरी चेतना, मेरा जो भावना है, मेरा प्रेम जो है आपके चरण कमलों में बहती रहे, वही तो जीवन का लक्ष्य, नहीं तो दरिद्र जीवन है। भले करोड़ों कमाए, क्या ले जाएंगे हम साथ में, चिंता ज्यादा है। 11वें स्कंद में है और अवधूत ब्राह्मण कहता है कि धन से आने वाली 15 प्रकार के अनर्थ, उसके ऊपर मैंने एक पूरा सेमिनार किया था, कनेक्शन मांगने के लिए नहीं कहने के लिए, कमाते वक्त चिंता, आने के बाद चिंता, खर्च करते वक्त चिंता, रखा तो चिंता, नहीं रखा तो चिंता। और लोगों को लगता है कि नहीं, वो उसके बिना ठीक है, प्रैक्टिकल जीवन में जरूरत है, जस्ट मेक द टू एंड्स मीट। मनुष्य जीवन ऐसा चला जा रहा है, हर क्षण देखते 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 कैसा चला जाता है, इम्परसेप्टिबली पासिंग, देखते 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 अंकल आंटी बन, देखते 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 नाना नानी दादा दादी, और देखते देखते एक फोटो रह गया बस दीवार, बहुत अच्छे थे हमारे दादा जी, ऐसे चले जाए। तो सबसे बड़ी तपस्या क्या है, सबसे बड़ी तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का, बोले करो तपस्या, मनुष्य जीवन है तपस्या, पर कैसे, नायम देहो देह भागान के कष्टान कामान अरहते, कुत्ते बिल्लियों को जो थोड़ा बहुत तपस्या करने से खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना मिल जाता है, उसके लिए तपस्या क्यों कर रहे हो, तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या क्यों आई, क्या करना है, क्या वो दिव्य तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र का, ये न सत्वम शुद्धे, जिससे हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाए, जिससे हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाए, वो तपस्या है। क्यों क्यों अस्तित्व को शुद्ध क्यों करना है, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, अरे सुख चाहते हो ना, आध्यात्मिक सुख के लिए तपस्या करो, भौतिक सुख के लिए नहीं, वो तो जितना भाग में लिखा है वो मिलेगा ही, मिलेगा ही, वो आध्यात्मिक सुख के लिए तपस्या करो, अस्तित्व को शुद्ध करो, क्यों शुद्ध करना है, ये ना सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम, आध्यात्मिक सुख के लिए। तो कोई कहेगा क्यों आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख में अंतर क्या है, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अरे 5 पैसा डालो 5 करोड़ का लाभ है, अब क्या भगवान की तपस्या, पत्र पुष्पम फलम तोयम, पैसा लगता है इन चीजों के लिए, कलयुग में थोड़ा बहुत पैसा लगता होगा फूल खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, पानी भी धीरे धीरे हो जाएगा। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहतम अष्टम, लाभ क्या है, अनंत काल तक यज्ञ परिवर्तन ते तद्धाम परम, तो आप कहेंगे प्रभु जी अस्तित्व को शुद्ध करने का क्या क्या करना है, बोलो ना, सबसे सरल तपस्या क्या है, सबसे सरल तपस्या आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। नारद जी कहते हैं आराधित हो यदि, अगर हरि की आराधना कर रहे हो तो फिर कौन सी तपस्या जरूरी है तुमको, और हरि की आराधना नहीं हो रही है तो खाक में है तुम्हारी तपस्या, धिक्कार है, क्या मिलेगा उसमें, सब देखो क्या हुआ हिरण्यकशिपु का, हजारों साल का दिव्य युगों तक तपस्या करेगी क्या हाल होगी। आराधितो यदि हरि ही तपसा तथा तो तपस्या की क्या जरूरत, और अगर हरि की आराधना नहीं हो रही है तो फिर तपसा तथा तो तपस्या करके क्या फायदा। अंतर बहिर यदि हरि तपसा, जो भगवान को अंदर भी देख रहा है बाहर भी देख रहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कौन देख सकता है अंदर बाहर, प्रेमांचल अच्छुत भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूप। जहां भी बाहर देखेगा, इस महाप्रभु ने दिखाया, जहां भी बाहर देखते थे कृष्ण का स्मरण आंख बंद किए थे मोरम वृंदा। यानी तपस्या का मतलब भगवान की भक्ति करना, इससे अलग कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। क्यों क्यों भगवान की बड़ी भगवान की भक्ति सबसे बड़ी तपस्या है? क्योंकि भगवान की भक्ति करना मतलब सबसे पहले नम्र होना पड़ेगा कि मैं तुच्छ हूं, भगवान महान है, इसीलिए मुझे उनके ही शरण जाना है। दूसरी तपस्या अहंकार को बढ़ाती है। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञान जातस्य पार्थ संपदम आश्रय। जितना तपस्या करेंगे दांभिकता दिखावट दर्प मेरे जैसा तपस्या कौन किया है, अभिमान पूजा चाहिए मेरे को, और जिसने भी नहीं झुका सर तो उसको सर काट दूंगा, क्रोध और पारुष्य कटु शब्दों में बोलना, क्योंकि तपस्या से बल मिलता है शक्ति मिलती है, शक्ति जो है सर पे चढ़ जाता है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सबसे बड़ी तपस्या है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति का सबसे सरल तरीका हर नामान कीर्तन योगी नाम नृपनिर्णीतम। कोई भी हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कर्म मार्ग में हो ज्ञान मार्ग में हो अष्टांग मार्ग में, सब में हर नाम एव केवल हर नामान कीर्तन हरि नाम का कीर्तन। खास करके कलयुग में इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि कली का मतलब क्या? कली मतलब झगड़ा और दांभिकता। कली का लक्षण है जहां चार लोग एकत्रित हुए वहां झगड़ा और दिखावट, दिखाने के क्या वो दिखाने की दांते और चबाने की दांते और होते हैं। इस तरह से दांभिकता और झगड़ा कली कली के लक्षण ही क्वारल एंड हिपोक्रेसी। झगड़े का मूल कारण क्या है? अहंकार। चार लोग साथ में आए, नहीं मैं जैसा चाहता हूं वैसे हो, मैं जैसा चाहता हूं वैसे हो, ठीक है तू आप जा जा, मैं अपना तोड़ देना। झगड़ा मतलब टूटना टूटना टूटना, मतलब संग में नहीं आ सकते। और अंदर से अहंकार, सामूहिक रूप से अहंकार का प्रकट कैसा होता है? झगड़े के रूप में, सामूहिक रूप से झगड़ा और अंदर से दांभिकता। मैं हूं तुच्छ पर दिखाना चाहता हूं कि मैं बहुत महान भक्त हूं, कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। एक मैथिली शरण गुप्त आठवीं में थे, पर्दा बोल के ये था उनको, एक ऐसे व्यक्ति दुनिया को दिखाता है एकदम फर्स्ट क्लास के सब लेके जाता है, अंदर देखे पर्दा खोले तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कपड़े पहनने के लिए लोगों को नहीं है परिवार में, पर बाहर जाता है तो एकदम एक ही सूट है उसके पास, वही उसी को पहन के जाता है। मतलब दांभिकता, दिखाना कुछ और है कुछ और अंदर। तो जो अहंकार का और कली को और कुछ नहीं करना पड़ता है, कली को एक ही काम करना पड़ता है बस, ये झगड़ा वगड़ा लाने के लिए कली को बहुत बड़ा, जैसे हमको प्रचार करने के लिए कितना समस्या लेना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है, कली कुछ नहीं करता है। कली सबके हृदय में अहंकार को थोड़ा पंप करता है, साइकिल में हम हवा मारते हैं ना, फुटबॉल में हवा मारते हैं, सबके अहंकार को फूंक देता है। ही महान है, तेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, तेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, तेरे जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं, तेरा मत अंतिम मत। ऐसा चलता है कोई भी कुछ बोले हता वहां से झगड़ा शुरू, और अंदर अंदर से अहंकार का प्रदर्शन होता है दांभिकता के रूप। और कलियुग की युगावतार है चैतन्य महाप्रभु, कलि का काम है बलून को फूंकना और महाप्रभु का काम है उसको तोड़ना। और वो एक सुई लेके आए जहां भी देखे अहंकार तोड़ देते, और उसमें कौन सा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरण्य था। पर इस सुई को हाथ में पकड़ना है ना तो शक्ति चाहिए, क्योंकि इतना मोटा चमड़ी वाला वो फुगा है कि उसको ऐसा 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 ठूसोगे तो नहीं होगा, उसको ठूसना पड़ेगा एकदम फूटेगा, फूटने के लिए उसके ताकत चाहिए। और वो तो ताकत कहां से आता है, चार चीज चाहिए आपको, तृणाद भी सुनी चे ना तदोरी वसुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। जो तृण से भी अपने आप को नम्र समझता है यानी इसके हृदय में अहंकार नहीं, तदोरी व सहिष्णु सहन करता है, अहंकार सहन नहीं कर सकता, अहंकारी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे ऐसी नजर से देखा क्यों, देख मुझे देखता है वो नहीं देखा, देखता ही नहीं है मुझे, और देखा देख कैसा देखता है, अब क्या करे महाराज, देखा तो तकलीफ नहीं देखा तो तकलीफ। अहंकार कुछ भी एक कारण चाहिए झगड़ने के लिए, देख देखा ही देख बार बार देखता है, और थोड़ा देखा तो देखो थोड़े देख के चला गया, पूरा ठीक से देखा भी तरोरी वो सहिष्णुना और अमानिना, मान की अपेक्षा ही नहीं रखोगे, जो भी मिला बोनस नहीं मिला तो ठीक है, अपेक्षा वैसे भी इच्छा नहीं था, अमान देना क्या तकलीफ होता है थोड़ा सम्मान दे देने में किसी को, क्या जाता है हमारा नहीं, मैं क्यों उसको उसके सामने मैं क्यों झुकूं, पहले उसको झुकने दो। कीर्तनीय सदा हरि, और इसीलिए सबसे बड़ा तपस्या है संकीर्तन, इस कलयुग में सबसे बड़ा तपस्या संकीर्तन, संग में लाने नहीं देता है कलि हमको, संग में आ जाएंगे तो मेरा असर चला जाएगा, सबके फूके को फूक फूक के रखूंगा, तू इतना बड़ा है वो लोग तेरे घर में आने तो फिर संकीर्तन, मेरे घर में होना चाहिए संकीर्तन, मेरे घर में होना चाहिए, ठीक है सब लोग अपने अपने घर में, संघ में कैसे कीर्तन करोगे, सब अपने अपने घर में रह के करें, ऐसा नहीं चलेगा। तो संकीर्तन करने के लिए ये जरूरी है तृणादपि सुनिश्चित, और वैयक्तिक रूप से संकीर्तन तभी होगा जब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की शरण लेता है कि प्रभु ये अनर्थों को निकालने के लिए मैं मेरे लिए नामुमकिन है, मैं असमर्थ हूं और मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, और जो हूं सो हूं बस, ये नम्रता चाहिए स्वीकार करने के लिए, कोई किसी को कुछ कहना नहीं चाहता अपनी कमियों के बारे में, क्यों नहीं कहना चाहता, अगर कह दूंगा तो सबके आंखों के सामने मैं गिर जाऊंगा, फिर मुझे कोई सम्मान नहीं देगा, और दुर्भाग्यवश अगर कोई कुछ कहा उसको संभालने का तरीका नहीं आता है अच्छी तरह से, एक वैष्णव किस्म ठीक है, दुर्गुण किस्म नहीं, कोई उतर के तो नहीं आया हुआ यहां ऊपर से, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे दुर्गुण हैं, बहुत सारे त्रुटियां हैं, ठीक है, एक अच्छा गुण है ना कम से कम, भगवान के भगवान की शरण में आ रहे हैं, सारे दुर्गुण क्यों ना हो पर एक अच्छा गुण है कि नम्रता पर भगवान की शरण में आपके प्रभु मैं पूरे गंदगी से भरा हुआ अब रुपया से बच्चा, छोटा बच्चा, नवजात शिशु, मलमूत्र विसर्जन करने के बाद उसको डायपर खोलने नहीं आता उसको, क्योंकि गांठ बांधा हुआ है ना, रोता है वो बस। तो मम्मी समझ जाती, अरे अरे चिल्ला रहा है। मां को बच्चे के रोने के आवाज से समझ में आता है कि भूख के लिए रो रहा है, या इसका डायपर फेंक दिया इसलिए रो रहा है, या इसको चींटी काट रहा है इसलिए रो रहा है। दूसरों को नहीं समझता, दूसरों को लगता है हमेशा रोता रहता है। मां को कैसे समझता है? क्योंकि प्रेम का बंधन है, इसीलिए उसकी जरूरतें, जिसके प्रति प्रेम है उसकी जरूरतों क्या है समझ जाता है। प्रेम नहीं है तो समझाना पड़ता है, समझाने के बाद भी नहीं समझता, कितनी बार बोली मुझे समझते ही नहीं हुआ। तो भगवान के सामने जाएंगे तो ठीक है, निकाल के साफ आप करके छे तो दर्पण मार देना, भवान निर्वापण। तो कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है संघ में आके कीर्तन करना। क्योंकि जहां संकीर्तन होता है वहां कली का प्रभाव नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा, जब तक लोगों को यह पूर्ण विश्वास नहीं होगा, ये समझ में नहीं आएगा, यही सबसे बड़ी तपस्या है हरिनाम संकीर्तन। एक तो भगवान का नाम लेना, और खास करके प्रामाणिक श्रद्धालु भक्तों के संग में आकर लेना, सबसे बड़ी तपस्या है। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, बस आओ साथ में आओ, कीर्तन करो, हरिनाम कीर्तन करो, फिर देखो यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, फिर भगवान की अनुभूति होगी, भगवान की कृपा आपके जीवन में समझ में आएगी कि हाँ मुझे मिली है कृपा। यही श्रील प्रभुपाद जी का देन है। He built a house in which the whole world can live. उन्होंने एक ऐसा संसार बनाया, ऐसा एक घर बनाया जिसके अंदर पूरी दुनिया रह सकती है। Real United Nations, Real UN। हम भेदभाव नहीं करते। हमारे मंदिर में अभी जीबीसी मीटिंग चल रहा है मुंबई में, अफ्रीकन डिवोटी, अमेरिकन डिवोटी, कोई रशियन डिवोटी सब आ रहे हैं। हमको लगता भी नहीं, पहले आते तो लोग वहां गया रशिया रोमानिया गए, अरे वैष्णव है हरी बोल, बस भूल जाते हैं। शारीरिक जो ये क्या बोलते हैं, शारीरिक उपाधियां है उसे परे जाते हैं हम, हाँ देखते हैं बस भाई, और एक मच्चिता मदगद प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत समान नित्य दुष्यंति जन्मंति। सही में ये वैकुंठ लोग है, सही में वैकुंठ है। आपने देखा होगा एक सुंदर चित्र है, रासलीला चल रहा है ऊपर, और एक भाग में ऊपर का भाग, और उसी के नीचे में हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु का और कृष्ण राधा कृष्ण का। और आपने देखा है वो पिक्चर, वैष्णव सम्मुख के ऊपर में देखो, ऊपर में रासलीला है और नीचे हरिनाम संकीर्तन, एक्चुअली रासलीला है। हरिनाम संकीर्तन में भगवान वैयक्तिक रूप से आदान प्रदान करते। कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों ने अपना अनुभव बताया कि कीर्तन के दौरान बड़े प्रेम पूर्वक जब कीर्तन चलता रहता है लोग एकत्रित होकर, तो उनको लगता है कि खास आज भगवान ने मेरे ऊपर खास कृपा की। मैं सबको देख रहे सोच रहा था बेचा रहे इन लोगों को, नाच रहे, पर इन लोगों को इतना आनंद नहीं मिल रहा जितना मुझे मिल रहा है, ऐसे गोपियों को लगता था कृष्ण सिर्फ मेरे साथ नाच रहे, बेचारी गोपियां वो ऐसे ही डंडा घुमा रही, असली दांडिया ना हमारे साथ हो रहा है। तो इस तरह से हरिनाम संकीर्तन डायरेक्टली रासलीला में प्रवेश है, डायरेक्टली भगवान के साथ रस का आदान प्रदान। रसवर्चन प्रसौप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, और जिसने एक ऊंचे रस का एक बार आस्वादन कर लिया, फिर दूसरे रस जो है जड़ रस अपने आप चला जाएगा, प्रयास करने की भी जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं जी, बस आप रखो बस चलिए। गया, कितना अच्छा था, खाता था पीता था। अभी क्या बता दें, घास फूस खाता है कुछ बेचारा, और भक्त मुड़ के देखते बेचारे। अद्भुत है माया देव, ये उसको बेचारा बोलता और ये उसको बेचारा बोलता। तो भक्त कहते पागल खाने में, पागल लोग कहते कि डॉक्टर जब आता है बेचारा ये समझता हम सब पागल, और डॉक्टर आके कहता है बेचारे लोग समझते कि ये सब ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? एक समझता है कि दूसरा पागल है, और दूसरा जानता है कि ये सब पागल है। तो ये पूरी दुनिया एक बड़ा पागल खाना है। अपने आप को कुछ पागल मतलब कौन, जो अपने आप को कुछ और समझता है। कोई मैं सोचू मैं प्रधानमंत्री हूं, अभी लाल किला में बैठा हूं, 15 अगस्त का लेक्चर दे रहा हूं, तो कहेंगे बेचारा, अभी तक ठीक था ऐसा संभव बैठने के तक, अब कुछ और ही समझने लगा। अपने आप को कुछ और समझता है तो पागल है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है, शरीर समझने लगे पूर्ण रूप से शरीर स्तर पर रहे देहात्म बुद्धि तो पागल बने। तो पूरी दुनिया पागल है, और उसने जो ठीक होने लगता है ना तो सारे पागल बोलते बेचारा अच्छा था, हमारे साथ था संग में, कितना आनंद लेते थे। अभी वो बिगड़ गया, पर उसको समझता है कि मैं भी मैं सुधर गया। इस तरह से ये तपस्या है, और बहुत कारण, बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, बहुत सारी लोग कन्विंस करेंगे ये कारण के लिए मैं हरित संकीर्तन में नहीं जाता, ये कारण मैं भक्तों का सम नहीं करता। कुछ भी कारण है, सिर्फ कली का एक क्या बोलते हैं, एक कन्विंस करना है हमारे लिए बस, और अहंकार उसको स्वीकार कर लेता है बस। सबसे बड़ी तपस्या है भगवान के सामने आए और भक्तों के सम बड़े प्रेम पूर्वक जब भी मौका मिले दोनों हाथ उठाकर नम्र भाव से इतना आदमी स्वीकार करोगे तो मान ही ना मान, दोनों हाथ उठाकर महामंत्र का उच्चारण करें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्री गौरा।